ಋಣಿಮಿಲಿತಂಗೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮೋ. ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಮೋ ಗೌರಕ್ತಿ ಗುರವೋ ಗೌರಸಂದಾಯ ರಾಧಿಕಾಯೈ ತದಾಲಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ತದಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ. ಯಂ ಪ್ರಾಬ್ರಜಂತಮನುತೇ ತಮತೇ ಪ್ರಕೃಷ್ಟಂ ದ್ವೈತಾಯ ನೋ ವಿರಹ ಕಾಕಲ್ಯಾಜುಹ ಪುತ್ರೇತಿ ತನ್ಮಯತಯಾ ಸರ್ವೋ ವಿನೋದು ತಂ ಸರ್ವಭೂತರಿದಂ ತವೈವಾಸ್ಮಿ ತವೈವಾಸ್ಮಿ ನ ಜಿಮಾಮಿ ತ್ವಯಾ ವಿನಾ ಇತಿ ಬಿಧ್ಯೇ ರಾಧೇ ತಂ ನೈಮಾಂಸಿ. ಅಭೀ ಥೋಡಿ ದೇರ್ ಪಹಲೆ ಯಹಾಂ ಕೆ ಮಾಥೆ ಚತುರ್ವೇದಿ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆ ಬಾತೆ ಹೋ ರಹಿ ಥಿ. ಮುಖ ಮೇ ಭಿತರ್ ಲಗಾ ದೋ. उनका संग का प्रभाव हमारे चित्त में आ गया. वो कह रहे थे प्रसंग क्रम में चारों वेदों के ज्ञाता हैं, व्याकरणाचार्य हैं, साहित्याचार्य हैं, न्यायाचार्य हैं, सभी विषयों के. तो कुछ वार्तालाप होने का, बड़े नम्र भी नहीं, बड़े सौम्य मूर्ति वाले हैं. करते ही से वो चाहे शंकराद्वैत अद्वैतवाद हो चाहे भक्ति हो, सब एक ही चीज है. और कृष्ण के चार सखा हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष के. ये उद्धव जी भी भगवान के भक्त हैं, उनमें भी क्या धर्म अर्थ मोक्ष की इच्छा है. अर्जुन में भी मोक्ष और धर्म की इच्छा है. और सब ये बहुत सी बातें बतला रहे हैं. हमने भी बड़े निवेदन करके कहा उनके विचारों का. अभी तो आपके पास भी समय नहीं, हमारे पास जो भी समय में भी प्रवचन के लिए जाएंगे. तब हम साधारण जो भक्ति के अभी साधक निम्न कोटि के हैं, हम लोग धर्म अर्थ काम और मोक्ष की वंशा को अपने पैरों पर रौंद देते हैं, उनको निकाल देते हैं. तो फिर शुद्ध महात्मा में भी कृष्ण के नित्य परिकर अर्जुन उद्धव, उद्धव में यदि अर्थ धर्म काम की मोक्ष की इच्छा होती तो आशा महो चरण ऋणि जीशाम हम और बंदे नंद बद्दी सिंह ये सब कहते नहीं कहते. और अर्जुन अर्जुन विश्वरूप को देकर के भी कुछ कुछ उसके प्रति कुछ घिनौती आ गई. इसे कहा जो अपना जो रूप जो कृष्ण का रहे वो दिखलाइए, उन्होंने दिखलाया. गीता में भी शुद्ध भक्ति की ही बातें बतलाई गई. वो क्या है ब्रह्म ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा में शोध न कांते समाज सर्वेश भूतेश मद भक्ति लभते ये परम बतलाया गया. वो गीता के कर्मधान नाम के पहले मम मना भव मद भक्ते, इसमें धर्मार्थ मोक्ष की वांछा की बात ही कहा है. यह जैसा आपके पीछे विचार करेंगे आप इन सब चीजों का विचार. तो वही मैं सोच रहा था जैसे ये कुछ गंध आ गई इसलिए हमारे स्टॉव में भी गड़बड़ हो गया. वही सोच रहा था. देखो तुम लोगों का सौभाग्य है चारों वेदों के ज्ञाता और सब उपनिषदों के ज्ञाता, न्याय वेदांत पातंजल सबके ये आचार्य और उन लोगों को भी शुद्ध भक्ति का ज्ञान नहीं है। भक्ति और अद्वैत बात को एक कर देते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष कृष्ण में भी लगा रहे हैं। वे आप लोगों का कितना सौभाग्य है। एक वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी टॉप ऑफ लर्नेड पर्सन ऑफ वेदा टोर वेदा मास्टर ऑफ वेदा न्याय दर्शन एंड ऑल व्याकरण आचार्य एंड सेलिंग दैट अर्जुन उद्धव वेर वंटिंग धर्म अर्थ काम मोक्ष एंड भक्ति एंड अद्वैत बात आर सेम थिंग सो यू आर सो मच लकी दैट यू नो ऑल दीज थिंग। ठीक से आशा महो चरण रेण विषाम है श्याम का सनातन गोस्वामी की टीका के अनुसार में कुछ हमने व्याख्या की। वी हैव एक्सप्लेन्ड यस्टरडे बिफोर यस्टरडे अबाउट आशा महो दिस श्लोक जिससे हमने इसका अर्थ बतला रहे थे। भेजे मुकुंद पदवी, मुकुंद पदवी का कुछ अर्थ किया था और भी कुछ शब्दों का अर्थ हमने सनातन गोस्वामी जी की जैसे अर्थ था है उसके अनुसार में उन्होंने व्याख्या दी थी। एक बात बताया कि गोपियों ने जिसको प्राप्त किया है उसको उपनिषद और वेद खोज रही हैं स्तुतियां, उनको मिला कि नहीं उसको कोई ठीक नहीं और गोपियों ने उसको प्राप्त कर दिया है। मुकुंद पदवी का अर्थ पदवी मैंने यहां पर मार्ग बतलाया जिस मार्ग से कृष्ण गोचारण करने के लिए जा रहे हैं उस पर गोपियां सवेरे और शाम को कृष्ण दर्शन की लालसा से उत्कंठित होकर और दोनों तरफ में आकर के खड़ी खड़ी देखती हैं, अपनी आंखों से उनका अर्चन करते हैं। दूसरा इसका और भी इसमें है नहीं किंतु सनातन गोस्वामी ने अनाधिकारी ज्ञान करके नहीं दिया। कृष्ण जबकि गोपियां जब अभिसार के लिए जाती हैं उस समय में उन हाथों पर और लताओं पर गुलमत पर जब अपना पैर रखें विशेष करके एक और अर्थ कृष्ण जबकि सवेरे में जबकि लौटते हैं अपने घर में जाते हैं उस समय उनके चरणों में कुछ कुमकुम लगे रहते हैं और कुमकुम क्या है वो गोपियों संबंधित कुमकुम और वो घासों पर लग जाता है। ऐसी घास जब होंगे कितना उसका सौभाग्य होगा। इसलिए ये मुकुंद पदवी है। और एक बतलाया मुकुंद की सेवा के जो मार्ग हैं भक्ति विशेष करके रागानुगा भक्ति वह मार्ग उसका जो आश्रय करते हैं उन्हीं की महिमा का वर्णन करना बड़ा भारी कठिन है। उस पथ को और वो भी पथ क्या है गोपियों के द्वारा चलित पथ है। जब भक्ति की महिमा असंभव है और उसके वर्णन करने में कोई असमर्थ है, तो जिसने उनको पा लिया है मुकुंद को, उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? स्वयं कृष्ण भी नहीं कर सकते। यदि कहो, कल यही आरंभ किया था, यदि कहो स्त्री जाति के लिए पत्नियों का प्रत्याग करना, आर्य पद को छोड़ देना, पति नहीं छोड़ा ऊपर से किंतु भीतर से छोड़ दिया है जैसे गोपियों ने छोड़ा है, कोई कोई स्पष्ट रूप से मीराबाई इत्यादि ने प्रत्याग कर दिया पतियों का, यह अनुचित है, वेद विरुद्ध है। यदि कोई कहे तो अतः सज्जनगण प्रभुपाद ब्रज सुंदरी बेगर तादृश आचरण की रूप से सही कतर है, तो वेद में क्या ऐसा कहा गया, इसलिए इनके पथ को जो उन्होंने किया छोड़ा, आद्य पथ को पतियों को छोड़ा, तो ये कैसे उचित हो सकता है? उसी के लिए कहें मुकुंद पद में सुतमेन्द्र विज्ञान, अरे सुतियां भी उनके चरण कमलों की खोज करते हैं, किंतु पाया नहीं, और उसी पदवी को उन्होंने पाया, इसलिए स्तुति के द्वारा भी समर्थित अप्रशंसित पथ है। माने वो श्रुतियां जिसको खोज रही हैं, अच्छी चीज नहीं होती तो क्यों खोजती, किंतु उनको मिल नहीं रहा और गोपियां उस चीज को पहले ही से प्राप्त कर लिया है, इसलिए श्रुतियों के साध्य को गोपियों ने प्राप्त कर, अभी ये साधन कर रही हैं और इसको वो सिद्ध, इसलिए वेद श्रुति के द्वारा प्रशंसित और मान्य है। अतः अब मैंने वहां पर कहा कि ये कहते हैं कि आज पर्यंत प्राप्त हम नहीं, वेदरपि शब्द मुख्यम तद एवेति भाव, श्रुति अपि कर्तृ मृग्यमेव केवलं न तु प्राप्तम्, प्राप्ति की आशा रखते हैं किंतु पाया नहीं, तो जो लिखा गया है श्रुतिचरी उपनिषदचरी ये सब का क्या हुआ? तो इसके लिए तब सनातन गोस्वामी क्या नहीं जानते हैं, हम लोगों से भी कम जानते हैं, उपनिषदचरी की बात उन्होंने तो लिखा है अतः वो भी जानते हैं, तब इसका सामंजस्य करना पड़ेगा। गोपियों का वह जो भाव है ललिता दिशा का, ये नहीं प्राप्त कर सकेंगे, अधिक से अधिक तो भी कर सकेंगे तो रूपानुगत होने कुछ ऐसा भी ले, और वो भी नहीं प्राप्त किया। वृंदावन में जब गए गोपी गृह में जन्म हुआ, उनका कषाय दूर हुआ उन गोपियों की कृपा से, तब कुछ हो सकता है। अतः धर्म ज्ञान आदि के उपदेश को वेद आदि दुर्लभतर वस्तु लाभ परिवार जन्म पति पुत्र आदि आर्य पथादि अधीनता त्याग करवार, इसलिए गोपियों ने वेद के ये जो ज्ञान इत्यादि के उपदेश हैं उनको छोड़ करके गई, ये निंदनीय नहीं बल्कि ये उन्हीं का साध्य है, जो साध्य के लिए ये लोग साधन कर रहे हैं उसको प्राप्त कर चुकी हैं, इसलिए उनके जो आचरण हैं वेद के निंदित नहीं बल्कि वेद के अनुसंधायी है, इसलिए उसको छोड़ देना ही पति के प्रति ममता त्याग इत्यादि ही, उनके प्रति आसक्ति को त्याग देना ही वेद विहित व्यवस्था का मुख्य फल है, ये समझो। वेद भी बहुत दूर से कृष्ण और कृष्ण भक्ति गोपियों की भक्ति का उल्लेख करते हैं, उनका भी प्रयोजन तत्व वही है। अंतिम किंतु साधारण लोगों को कर्ममय बांध रखते हैं, साधारण लोग उस पर नहीं पहुंच पाते। निखिल स्तुति मौली रत्नमाला दूति निराजित पाद पंकजांत अल मुक्त कुलई पाश्यमानम। देव परिषद अपने सिर के मुकुट से झंझन करते हुए नामदेव के चरणों में पुनः पुनः सौ स्तुति करते हैं। उनको डायरेक्ट रूप में सेवा नहीं कर सकते, ये मुक्त कुल के उपास्य हैं। कौन? हरिनाम। ऐसे ये मुक्त कुल की उपास्या गोपियां हैं। उपनिषद इत्यादि वेद गोपियों की चरण भूलि की भी वंदना का उल्लेख कहीं साक्षात रूप में नहीं कर सके। बहुत दूर से किया है तो वही, किंतु बहुत दूर से किया है। इसे गोपियों का पति पुत्र का छोड़ना ये निंदनीय नहीं, बल्कि वेद का भी यही मूल तात्पर्य है। विशेषतः स्वजन अपेक्षा मुकुंद भजन ना कर ले। यदि कोई अपने स्वजन पति पुत्र भाई बंधु माता पिता जो लौकिक संबंध है इन लोगों के लिए मुकुंद का भजन नहीं करता है, चारों वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे सत्व कर्म कैसे से रहो। जो लोग ठाकुर जी की सेवा नहीं करते, राजा कृष्ण की उपासना नहीं करते, वे लोग अपने माता पिता पुत्र भाई बंधु पति स्त्री के प्रति पूर्ण रूप से कर्तव्य निर्वाह करने पर भी उनको नरक जाना पड़ेगा। यही शास्त्रों का तात्पर्य है। इफ एनीवन इज नॉट सर्विंग कृष्ण और श्रीमती राधिका संजीवल दे आर डूइंग सो मच सर्विस टू देयर फादर मदर वाइफ हस्बैंड एंड चिल्ड्रन दे आर डूइंग सो वेल इन अ फाइन वे। But they will have to go hell if they are not serving Krishna, because Krishna is husband of husband, he is father of father, he is mother of mother, he is brother of brother, he is guru of guru, everything is Krishna. इसलिए कृष्ण के प्रति जब वो नहीं समर्पित हो सका, गुरु वही जो कृष्ण के प्रति हमें समर्पण करा करके कृष्ण का भजन करे, माता पिता वही जो कृष्ण के तरफ में ले जाए, मैं कैसे माता पिता का प्रत्याग करूं, पति वही जो पत्नी को कृष्ण के तरफ में ले जाए, और माता वही गर्भधारिणी है जो पुत्र को कृष्ण की भक्ति में ले जाए। गुरु न सच्चा सजनो न सच्चा दैवं न सच्चा यमो चाहिए समय उपस्थित। इसलिए कह रहे हैं यदि ऐसा कहेंगे तो श्रुति में ऐसा लिखा है, इसके लिए विरोध उत्पन्न हो जाएगा। श्रुतियों में इस प्रकार से कहा गया है, इसीलिए गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, क्या कहा है, त्रैगुण्य विषया वेदा मैं त्रिगुण्यो व्याकरणाचार्य और वेदाचार्य लोग इस चीज को अभी गीता भी नहीं समझ पाते, उनके समझ में न जाने क्या है। वो त्रिगुण विषय वेद को लेकर के धर्म अर्थ काम को ही पारमार्थिक समझ लेते हैं, इसलिए त्रिगुण विषय वेदा वेदागार थ्री वर्ड धर्म अर्थ काम मोक्ष लाइक दिस धर्म अर्थ काम वल्ली नॉट मोक्ष इवन। सो कृष्ण हैज टोल्ड अर्जुन not to follow Vedas, to give up and be Nestri Gunna, Nirguna, and then be Bhaktavan, Bhakta. इसलिए तेजिन नदी से आ वेदा वेद में यही कहेंगे, क्या कहें, मातृ देवो भव पितृ देवो भव पति देवो भव अतिथि देवो भव, बस यही। और धर्म अर्थ काम मोक्ष को इसी के लिए वेद में प्रधान है यज्ञ विषय, और यज्ञ विषय में क्या हमको पुत्र नहीं है तो पुत्र हो जाए, पति अच्छा नहीं है पति मिल जाए, राज्य नहीं है राज्य मिल जाए, तो ये धर्म और धर्म अर्थ काम, बस ये तीनों की प्रधानता है। जितने भी यज्ञ हैं, राशि यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ, सोम यज्ञ, सौत्राणी यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ, बरसात यज्ञ, जितने यज्ञ हैं सब देही 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 भगवान की कामना का तृप्त कुछ नहीं है। अधिक से अधिक कहीं कहीं पर ये दिख सकता है कि यज्ञेश्वर हरि हैं, उनको अपने कर्मों का फल कुछ अर्पण कर दे, दया कर दे, अधिक से अधिक ये होगा। इसलिए वेद में भगवत भक्ति यद्यपि है किंतु वो अलक्षित रूप में वहां है, अव्यक्त रूप में है। जैसे वेदों का भाग उपनिषद गोपाल तापनी में कुछ दिया गया, ये भक्ति वर्णन कहाँ का है, कौन सा स्थिति, तो ये सब वेदों में कहीं कहीं का यह है किंतु स्पष्ट रूप में जैसे श्रीमद् भागवत में है ऐसा कहीं नहीं है। इसलिए तुम पहले तो निष्काम हो, कोई भी संसारी कामना नहीं होना चाहिए तो भक्ति में नहीं आता है, भक्त ही नहीं हो सकता है, साधारण भक्त नहीं। इफ एनीवन हैज एनी एम्बिशन ऑफ एनीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड ही इज नॉट प्योर भक्त, सो ध्रुव इज नॉट प्योर भक्त। इसलिए कृष्ण स्वयं कह रहे हैं निष्काम बनो, और निष्काम के बाद में तब फिर क्या होगा, तभी भक्ति कुछ होगी। कौन सी भक्ति, प्रधानी भूता गुरुभूता भक्ति इत्यादि होगी, सकाम भक्ति, वो अर्पण करने वाली भक्ति। और इसके बाद में शुद्ध भक्तों का संग होने से, जब निष्काम होने के बाद में, तब पराभक्ति होगी, निर्गुणा भक्ति होगी। और भी कहा गया है, क्या है ये बहु ब्रह्म जन्म की अनंत कथा रसस्य, ब्रह्म जन्म की क्या जरूरत है, ब्राह्मण कुल में जन्म होकर के यज्ञ करने से क्या लाभ है, या ब्रह्मा का जन्म होने से ही क्या लाभ है। यदि अनंत कथा के अनंत की कथा कृष्ण की कथा में आपको रुचि और रस नहीं है, और यदि अनंत कथा से कृष्ण की कथा में आपको रस और रुचि है तो इनकी कोई भी जरूरत नहीं है, ब्राह्मण जन्म की कहीं भी जन्म हो जाए तो उसको भगवान की कृपा को प्राप्त कर लेता है। है एक श्लोक में भी आराधितो हरि तपसा, नाराधितो यदि हरि तपसात, अंतर बहिर् यदि हरि तपसात, नान्तर बहिर् यदि, ऐसे ये यज्ञ इत्यादि सब में ले लो, यदि भगवान की आराधना हो गई तो इनकी कोई जरूरत नहीं है तपस्या की, क्या होगा तपस्या करके, और यदि नहीं आराधना हुई तो तपस्या करके तू क्या कर लेगा, तुम यज्ञ करके क्या कर लेगा यदि भगवान में आराधना नहीं है, और यदि आराधना है तो इनकी करने की कोई जरूरत नहीं है। कई असमर्थों की बुद्धि में ये नहीं आता जो लिखा है सवनाय कल्पते, जो भगवान की आराधना करते हैं, भगवान का नाम करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, शब्द सवनाय कल्पते, वो सवन यज्ञ करने के लिए योग्य बन जाते हैं। सवन यज्ञ करने के लिए ब्राह्मण जन्म अत्यंत आवश्यक है। तो यदि कोई शूद्र भगवान का नाम करते ही या हरि कथा सुन करके दीक्षित होकर के भगवान का भजन करने लग गया तो सवन यज्ञ क्यों नहीं करता, नहीं करता, हाँ करने के योग्य हो गया है किंतु ये कुछ बेकार की चीजों को क्यों करे, इसलिए उसकी रुचि नहीं होता, इसलिए नहीं करता। किंतु यदि करता है तो कोई हर्ज नहीं, कर सकता है, किंतु करने पर वो जरा भक्ति से चित हो सकता है। इसलिए ये दोष के वजह से इन यज्ञों को ब्राह्मणों के द्वारा जो किए गए, ब्राह्मण माने क्या है, वहां पर जातिगत वंशगत जो ब्राह्मण है, हमारा यह जो है यह चतुर्वर्णमय सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, यदि ब्राह्मण कुल में जन्म होकर के ब्राह्मण का कार्य नहीं करता, ब्राह्मण में विचरण नहीं करता, तो ब्राह्मण होने योग्य नहीं। और यदि नीच जाति में भी उत्पन्न होने पर भी उसके उच्च जाति के लक्षण अर्थात सप्त में भगवत चिंतन करता है, भगवान के हरिनाम में मत रहता है, तो ऐसे ब्राह्मणों से वो उन्नत है जो कि भगवत भजन नहीं करते, केवल जाति और जनेऊ का ही लेकर के कहते हैं। इसलिए भगवान की कथाओं में जिनको अनुराग हो गया है उसमें असंख्य ब्राह्मण जन्मों की अर्थात ब्रह्म जन्म की क्या जरूरत है, उनको कोई भी जरूरत नहीं। कोई भी भक्त ब्रह्मा का पद लेने के लिए तैयार हो सकता है कि नहीं? शुद्ध भक्त, हम लोगों में साधन की स्थिति में रहने वाले भी ब्रह्मा नहीं चाहते। हो सकता है कि दो कौड़ी के लिए मारामारी करे, कुछ रुपये है तो उसको चुरा ले, कुछ भोग के प्रति भी लालचा हो, किंतु मुख्य अंततः स्वाभाविक रूप में वो कहेगा हमको मुक्ति की जरूरत नहीं है, भोग की जरूरत नहीं है, ये तो कहेगा ही। और जो भक्ति में सिद्ध जरा प्रतिष्ठित हो गए हैं वो न स्वरूपता ही शक्ति को छोड़ देंगे, स्वरूपता जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी है या और हमारे गौड़ीय वैष्णव लोग हैं इत्यादि। स्थल में एकमात्र भगवत कथा अनुरागी साध्य फल स्वरूप है। इसलिए वेदों में, परिषदों में, शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में, वैष्णव आचार्य के ग्रंथों में भगवत कथा में अनुराग ही सबका साध्य फल बतलाया गया। भगवत कथा में जो रति है और भगवान के प्रति दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बल्कि भागवत का कुछ वैशिष्ट्य है भगवान के भी। एक भगवान और एक भागवत, भागवत दो, संत भागवत और भक्त भागवत। भक्त भागवत मैंने रसिक, माया से अतीत, विषयों से अनासक्त, रसिक तत्वज्ञ, ये भक्त, उसके बिना कृपा के भगवान को नहीं पाया जाता। और भागवत की कुंजी ऐसे भागवतों में, वैष्णव भागवत के हाथों में, जब तक वो भागवत का तात्पर्य नहीं बतलाएंगे अपने पढ़ने से लाख चेष्टा करने से भी नहीं होगा, या तो कर्मी होगा या द्वैतवादी हो जाएगा। बड़े बड़े भागवत के यहाँ पर विद्वान हैं, अधिकांश लोग दो एक ऐसे हैं जो शुद्ध भक्त हैं, नहीं तो प्राय सब मायावादी हैं और पैसावादी हैं, भक्तिवादी नहीं है। इसलिए भगवान की कथा को सुनने को तुम लोग शास्त्रों का साध्य मानो। फल जिनको भागवत की रुचि नहीं है भागवत में, वो कुछ सुकृति का कार्य करें, वैष्णव की सेवा करें, ठाकुर जी की सेवा करें, फूल लाएं, रसोई बनाएं, अर्चन करें। इसलिए हम लोग जब आए थे तो सबसे पहले उनको बर्तन मांजना, कोई भी हल्लाद साहब आ जाए, बड़े विद्वान भी आ जाए, तो पहले उनको घुसाया जाता था हरिकन साफ करने के लिए। इसके बाद में उन्नति होने पर ठाकुर जी के और वैष्णव के बर्तन धोने के लिए, जगह साफ करने। इसके बाद में जब वो योग्य हो जाते थे तो उनको दीक्षा दी जाती थी, एक वर्ष में, दो वर्ष में, तीन वर्ष में, चार वर्ष में, ऐसे से हमने देखा जो 10 वर्ष तक नहीं दिया गया। इसके बाद में जब परिपक्व हो गए तब उनको दीक्षा देकर के लाल कपड़ा दिया जाए, शुद्धि अशुद्धि का विचार सिखलाया जाता, तब अर्चन करो और ठाकुर जी का पहले भोग रंधन करो और इसके बाद में अर्चन का सब विधिवत सीखो और तब फिर किसी से आने लगाया जाए। पीठों और पीठों का परिचय उसमें विचार होता था, ईठो मैंने क्या, जूठन का विचार होता था। यदि पानी लाया और उसने अपना हाथ पानी में लगा दिया तो वो घड़ा का पानी बर्बाद हो गया, ये नख से छू गया। रसोई में नमक देकर के फिर रख दिया तो वो सकरी हो गया, नहीं लगता। ठाकुर जी के भोग में वही नमक दूसरे चीज में देगा, वो जूठा हो गया। तरह तरह के विचार होते थे। आजकल का इसका विचार नहीं, आजकल तो जो आया मस्तक मुंडन कर दिया, एक सूता दे दिया, बस कोई विचार ही नहीं। विशेष करके बंगाली लड़के हैं वो तो कुछ सीख लेते हैं, रसोई बनाना, अर्चन करना, जूता साफ करना, घर साफ करना सीख लेते हैं, किंतु इधर के लोग को अब व्यवस्था देखते हैं वो कलम के अतिरिक्त तो नीचे नहीं झुकना चाहते, तो सीखा क्या करेंगे, न अर्चन सीखते हैं और न तो रसोई बनाना सीखते हैं, न जूठा बर्तन, जो एक दिन कर लिया जबकि दीक्षा के पहले, आज जब हो गई तब कभी घुस नहीं सकते। सत्य तो ये हमारा अधिकार नहीं है, इसमें हम अधिकार को पार करके आए हैं। आरती में या प्रवचन में कीर्तन में आना जरा उनके धर्म के विपरीत हो जाता है, ये सब सीखना चाहिए। ये सब नहीं सीखने से मां नहीं मान दूर नहीं हो, पहले भिक्षा होती थी इसलिए कि जाकर के देखो तुम भिक्षा मांगने से तुम्हारा मान अपमान कहना, कोई जाली देगा, कोई प्रतिष्ठा देगा, कोई आजकल कुछ आर्थिक हो गया, इन सब चीजों को समझो और शुद्ध भक्ति में प्रवेश करो। भगवान के लिए यदि इन सब चीजों को नहीं किया जाएगा स्वीकृति नहीं होगी और तब फिर भगवान की कथा में रुचि नहीं होगी। इसे हम देखते हैं किसी किसी को इन सब कामों में रुचि तो है, भगवान की